समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं फरहत नाज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
नमस्कार फरहत। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वेल, हियर आई एम तन्वी खुराना एंड फरहत, वी बोथ आर हियर विद आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड टिल 8 o'clock वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर यू। टुडे इज 10th of August and it is a special day and of course it's a Saturday, so happy Saturday to all of you and let the light of this Saturday morning ignite your inner fire, let the happiness of the weekend radiate from within. So with this let's begin our program with the headlines.
जी तन्वी, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड की 2 दिन की सफल यात्रा के बाद तिमोर लेस्ते की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गई हैं। राष्ट्रपति आज दिल्ली तिमोर लेस्ते पहुंचेंगी। राष्ट्रपति तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज केरल के वायनाड में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे। वे कन्नूर जाएंगे और वहां से वायनाड के भूस्खलनग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। श्री मोदी आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भी जाएंगे। श्री मोदी राहत शिविरों का दौरा करेंगे, उसके बाद अस्पताल जाकर आपदा से सुरक्षित बचे लोगों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री एक समीक्षा बैठक करेंगे जिसमें उन्हें घटना और राहत कार्यों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
The Union Cabinet has approved Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 scheme. The Cabinet also gave its nod to the implementation of the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen during financial year 2024-25 to 2028-29. Briefing the media, Union Minister of Information and Broadcasting Ashwini Vaishnav said that 3 crore new houses will be constructed under Pradhan Mantri Awas Yojana. Mr. Vaishnav said out of these, 2 crore houses will be built in rural areas while 1 crore will be in urban areas.
गरीब, वंचित और मिडिल क्लास परिवारों पे बहुत बड़ा फोकस रहा है, इसीलिए पहले 10 वर्षों में 4 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इससे आया है। 3 करोड़ और नए घर जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहली घोषणा की थी, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कैबिनेट में डिटेल्ड चर्चा हुई। 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला लिया गया जिसमें 3,60,000 करोड़ टोटल बजटरी प्रोविजन रहेगा। 2 करोड़ घर रूरल एरियाज में रहेंगे और 1 करोड़ घर अर्बन एरियाज में रहेंगे।
Mr. Vaishnav said that a detailed discussion took place in the Union Cabinet with regard to the Supreme Court's judgment on SC and ST reservation. He said the Cabinet has a well-considered opinion that the NDA government is committed to the provisions of the Constitution framed by Baba Saheb Ambedkar. The Union Cabinet has also approved the Clean Plant Program CPP proposed by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. With a substantial investment of over 1,700 165 crore rupees, this pioneering initiative is set to revolutionize the horticulture sector in India and expected to set new standards for excellence and sustainability. The CPP will provide access to virus-free, high-quality planting material, leading to increased crop yields and improved income opportunities for farmers.
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए कल स्थगित कर दी गई। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ था और ये सोमवार को समाप्त होने वाला था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 115 घंटे तक चले सत्र में 15 बैठकें हुई। सत्र के दौरान 12 विधेयक पेश किए गए, इनमें से 4 विधेयक लोकसभा ने पारित किए। इनमें वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक, जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक और भारतीय वायुयान विधेयक शामिल हैं।
The Border Security Force, BSF, with the help of Border Guard Bangladesh, BGB, foiled an infiltration attempt along India-Bangladesh border in West Bengal's Cooch Bihar district yesterday. According to a spokesperson of the Border Guard Force, BSF troopers successfully addressed a significant and different kind of challenge at the India-Bangladesh border in West Bengal's Cooch Bihar with around 1,000 Bangladeshi nationals approaching the international border seeking refuge in India. The spokesperson said that upon encountering these people, BSF promptly approached BGB to take these Bangladeshi nationals back, ensuring that the situation was managed without escalating further tensions.
सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2024 के परीक्षा में विलंब करने की याचिका खारिज कर दी है। ये परीक्षा कल आयोजित होनी है। अदालत ने कहा है कि 2 लाख विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालना अन्याय होगा। याचिका में तर्क दिया गया था कि परीक्षा के लिए निर्धारित शहर परीक्षार्थियों के लिए बेहद असुविधाजनक थे। वहीं ब्राजील के साओ पाउलो में कल रात 61 लोगों को ले जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में विमान में सवार सभी 57 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि विमान रिहायशी इलाके में गिरा, जिससे मकानों को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि वहां रहने वालों को कोई चोट नहीं पहुंची। ब्राजील की स्थानीय विमानन कंपनी के अनुसार विमान ने पराना प्रांत के कास्काविल से साओ पाउलो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी।
In a vibrant prelude to the celebration of India's 78th Independence Day, Akashwani Kohima is all set to organize a musical fiesta at State Academy Hall in Kohima today. The music fiesta will begin at 4 p.m. Director General of Police Nagaland Rupin Sharma will be the guest of honor. This special celebration will honor the spirit of freedom and unity through an exceptional showcase of music and cultural performances from the 15 tribes of Nagaland. Assistant Director Program and Head of Program Akashwani Kohima, Abino Lasu, said that the event is not only a tribute to India's rich cultural legacy, but also a chance for all to come together and celebrate the nation's journey and achievements.
और तन्वी, अगर बात की जाए खेलों की, तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुश्ती में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पेश है हमारे पेरिस संवाददाता की ये रिपोर्ट।
पेरिस ओलंपिक खेलों में शुक्रवार को भारत की पदक तालिका में 6ठा पदक जुड़ गया, जब अमन सहरावत ने 57 किलो भार वर्ग की पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में पोर्टो रिको के डारियन क्रूस को 13-5 से हराकर कांस्य पदक जीता। अमन पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत के अकेले पुरुष पहलवान थे। बीजिंग ओलंपिक खेलों से लेकर अब तक भारत ने कुश्ती में कोई न कोई ओलंपिक पदक जरूर जीता है। भारत के लिए व्यक्तिगत स्पर्धाओं में ओलंपिक पदक जीतने वाले अमन सबसे युवा खिलाड़ी हैं। अपनी जीत के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए अमन सहरावत:
बहुत अच्छा लग रहा है। देश के लिए सोच के तो गोल्ड के आए थे, पर ब्रॉन्ज से संतुष्ट ना पड़ेगा। अरे बहुत खुशी हो रही है देश के लिए। अब दो 28 में ओलंपिक होना, उसमें गोल्ड की सोच के चलेंगे, देश के लिए गोल्ड लाएंगे।
महिलाओं की 4x400 मीटर रिले रेस में सुबह वेंकटेशन, ज्योतिका श्री डंडी, विद्या रामराज और आर पूर्वम्मा 3:32.51 के समय के साथ अपनी हीट में सबसे पीछे रही और फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। उधर पुरुष वर्ग की इसी रेस में मोहम्मद अजमल, मोहम्मद अनस, राजेश रमेश और अमोद जेकब भी कोई चुनौती नहीं पेश कर सके और इस सीजन के सबसे बेहतरीन समय 3:05.58 के समय के साथ अपनी हीट में चौथे स्थान पर रहे। शनिवार को कुश्ती में भारत की आखिरी चुनौती पेश करेंगी महिलाओं के 76 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में रितिका हुडा। उनके सामने होंगी हंगरी की बर्नाडेट नेगी। गोल्फ में महिला वर्ग के अगले राउंड के मुकाबले भी आज होंगे। कल तक अदिति अशोक 40वें और दीक्षा डागर 42वें स्थान पर थे। आकाशवाणी के लिए पेरिस से मैं महेंद्र सिंह लाल।
President Draupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankar and Prime Minister Narendra Modi have congratulated the Indian wrestler Aman Sehrawat on winning the bronze medal at the Paris Olympics. In a social media post, the President said one of the youngest male wrestlers in the Games, Aman has won a medal in his very first Olympics. She added that the wrestler has a promising career ahead and he will win several medals and accolades for India. The President also said that with his success, India continues its tradition of winning Olympic medals in wrestling. The Vice President said Aman's unwavering dedication and perseverance has made the nation proud on the global stage. The Prime Minister said Aman Sehrawat's dedication and perseverance are clearly evident.
वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में अगले दो दिनों तक अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। मौसम के बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मौसम वैज्ञानिक आरके जनमणि। जनमणि जी, पिछले कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, तो आने वाले दिनों में बाकी राज्यों में मौसम की स्थिति कैसी रहेगी?
अभी मेनली जो हमारा जो ऑरेंज कलर का वार्निंग है वो मेनली हमारा उत्तर प्रदेश और पूर्व मध्य प्रदेश, पूर्व राजस्थान इस जगह पर है, और दिल्ली में जो है लाइट टू मॉडरेट रेन पर हो रहा है रुक रुक के। और क्योंकि जो मानसून का जो कन्वर्जेंस लाइन है वो अभी दिल्ली के थ्रू में निकल रहा है, और उत्तर भारत में मेनली रेनफॉल का वार्निंग हरियाणा और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, यहाँ हेवी रेनफॉल होगा, और हरियाणा पंजाब में भी
जी। जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में कैसी स्थिति रहेगी?
जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश में भी बारिश होगा, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि मेनली जो उत्तर भारत के लिए फेवरेबल है, और तमिलनाडु में भी और केरल में भी आज रेन का इंक्रीज हुआ है, और ये हेवी रेनफॉल जो है तमिलनाडु केरल के लिए हम लोग भी आज जाएंगे।
जी धन्यवाद जनमणि जी आप मौसम की जानकारी देने के लिए। और श्रोताओं अब रुक कर लेते हैं महानगरों की खबरों का, तो तन्वी क्या है आपके पास चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में?
लेट्स बिगिन विद चेन्नई। तमिलनाडु साइबर क्राइम पुलिस हैव वॉर्न्ड पीपल अगेंस्ट फॉलिंग प्रे टू पीपल हु ऑफर कलरफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन फॉरेन कंट्रीज। आफ्टर विक्टिम्स वर ल्योर्ड टू फॉरेन कंट्रीज विद प्रोमिसेज ऑफ जॉब्स, दे वर फोर्स्ड टू वर्क एज साइबर स्लेव्स एंड एंगेज इन डिजिटल स्कैम्स इंक्लूडिंग कोरियर स्कैम्स, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड एंड डेटिंग स्कैम्स। एज पर द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, स्टेटिस्टिक्स से दैट एटलीस्ट 400 कंप्लेनेंट्स हैव फॉलन विक्टिम्स टू digital frauds from January 2024 to April 2024. And we have some more news from Chennai. The Greater Chennai Corporation and Blue Cross of India have jointly sterilized 46 stray dogs in the special vaccination drive. Following complaints of stray dogs menaced by passengers at Chennai Airport, Airport Authority officials held a meeting with the State Animal Welfare Board, the Greater Chennai Corporation, Blue Cross and animal welfare activists to decide on the appropriate measures to be taken. Corporation personnel conducted a detailed dog census to identify the actual community dog population at the airport, and a special drive for mass sterilization was held recently. And if we talk about Bangalore, Prime Minister Narendra Modi will be releasing 109 climate-resilient varieties of field and horticulture crops in New Delhi on Sunday. Among them, 13 high-yielding, climate-resilient and nutrient-rich varieties of fruit, vegetable, flower and medicinal crops are developed by the Indian Institute of Horticulture Research in Bangalore. In a media release, the Horticulture Research Institute, IIHR, has informed that these varieties will be dedicated to the nation by the Prime Minister. Mysuru Zoo, that houses exotic animals and known for breeding endangered species, are head. They have said that new facilities for the visitors are being added. Spread over 80 acres, the zoo has now a platform to view tigers in the enclosure. An extended glass case has been built on the mound from where the visitors can observe the tigers. The zoo authorities have also built a luggage room for the visitors to keep their luggage before entering the zoo. A swimming pool is also planned for the elephants, and there is also a plan to build an aquarium for displaying the sweet water fishes. Now let's go to Hyderabad. Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy and his team, including IT and Industries Minister D. Sridhar Babu, have pitched to Apple officials to expand their activities in Telangana for the Electronics Park, Skill University, AI City, Future City and other game-changing initiatives. The team visited the Apple Park, the corporate headquarters of Apple Inc. in California, making a strong pitch for Hyderabad and Telangana as the leading investment destination in several sectors. An official release stated that they were speaking to senior Apple executives who look after manufacturing, public policy and even healthcare divisions. The chief minister said he was confident that their highly encouraging and cordial talks with Apple executives would lead to several positive outcomes for Hyderabad and Telangana state. So these were the updates from Chennai, Bangalore and Hyderabad. Now Farhad, tell us more about Delhi, Mumbai and Kolkata.
जी तन्वी, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर से। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वीआईसी ने कल नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी ग्राम शिल्प लाउंज में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वजों, चरखों और वस्त्रों के बिक्री केंद्र का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मौजूद रहे राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने सभी लोगों से आह्वान किया कि वे स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने घरों पर खादी के बने राष्ट्रीय ध्वजों को फहराएं।
हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है
और एक बार फिर देश हर घर तिरंगा अभियान के साथ आजादी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। तो चलिए इस 9 से 15 अगस्त हम सब हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह और उमंग के साथ जुड़े और इस अभियान में होने वाली तिरंगा यात्राओं, मेलों, रैलियों और मैराथन जैसे कार्यक्रमों में भाग लें। अपने घर पर तिरंगा फहराएं और अपनी सेल्फी को harghartiranga.com पर अपलोड करें।
वहीं राजधानी के भारत मंडपम में चल रहा 28वां दिल्ली पुस्तक मेला बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पुस्तक मेले में इस बार 50 से अधिक प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 80 से अधिक स्टॉल लगाई गई है। और अब रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में मुंबई जिला एड्स नियंत्रण सोसायटी ने युवाओं में एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कल सुबह 7 से 11 बजे तक मुंबई में रेड इन मैराथन का आयोजन किया है। इस मैराथन की थीम है रन टू एड एड्स। सोसायटी के वडाला कार्यालय में आयोजित मैराथन में नागरिकों से एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने की अपील की गई है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में फल, सब्जी, फूल और प्रसंस्कृत खाद्य उत्सव शुरू हो गया है। ये उत्सव कल तक चलेगा। पश्चिम बंगाल सरकार के खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने इसका आयोजन किया है। इस महोत्सव में विभिन्न जिलों से खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित कार्य करने वाले लोगों ने भाग लिया है। हथकरघा स्वयं सहायता समूह आदि ने भी इसमें भाग लिया है। खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मंत्री अरूप राय ने बताया कि इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य अंतिम उत्पादों को बेचने का अवसर प्रदान करना है। और आज सवेरे में वक्त हुआ है महानगरों के मौसम की बात कर लेते हैं। दिल्ली में सबसे पहले बात करें तो कल शाम जमकर बारिश हुई है, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। शहर में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। मुंबई में बादल छाए रहेंगे, भारी बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव थंडरस्टॉर्म विद रेन। द मिनिमम टेम्परेचर इज 25 डिग्रीज एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्रीज। बेंगलुरु एंड हैदराबाद बोथ आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर फॉर बेंगलुरु वॉज 21 डिग्रीज एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 29 डिग्रीज एंड फॉर हैदराबाद द टेम्परेचर विल हवर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 24 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 32 डिग्रीज सेल्सियस।
जी तन्वी, मौसम के बाद अब रुक कर लेते हैं इतिहास का। आज 10 अगस्त 2024 है और आज ही के दिन 1990 में लगभग 15 महीने की यात्रा के बाद अमरीका का अंतरिक्ष यान मैग्लैन शुक्र ग्रह पर पहुंचा और उतरने के कुछ ही देर बाद उसका कैलिफोर्निया स्थित संचालन केंद्र से संपर्क टूट गया।
Let's go a little back in the year 1930 in the Gandhi cap case in Guntur. The magistrate prohibited wearing of Gandhi caps within a 5-mile radius of the town. And in 1948, Atomic Energy Commission was established.
और तन्वी, थोड़ा सा आप आगे बढ़े हैं तो सन 2008 की बात कर लेते हैं। चेन्नई में आज ही के दिन एड्स रोधी वैक्सीन का प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया। वहीं सन 2012 में भारत का अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण आज ही के दिन हुआ था।
And if we go a little back, in 1982, memorial of 201 martyrs from Maharashtra inaugurated. And in 2000, Parliament approved the Uttar Pradesh Reorganization Bill to create a hilly state of Uttaranchal.
और फिर से पीछे चलते हैं 1962 में आज के दिन बच्चों का पसंदीदा स्पाइडरमैन कॉमिक बुक अमेजिंग फैंटेसी में दिखाई दिया था। तो ये तो थी इतिहास की बातें, और अब आइए कुछ मशहूर हस्तियों को और साहित्यकारों को याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी, पत्रकार, समाजसेवी और अध्यापक श्यामलाल गुप्त पार्षद की। श्यामलाल गुप्त पार्षद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्प्रेरक झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता थे। कानपुर का नरवल कस्बा झंडा गीत के रचनाकार श्यामलाल गुप्त पार्षद की ऐतिहासिक स्मृतियों की सुगंध से आज भी महक रहा है। पार्षद जी द्वारा रचित विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा रहे ऊंचा हमारा झंडा गीत भारत माता की गौरव गाथा को अविस्मरणीय बना रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक कविता भी लिखी जो बहुत ही खूबसूरत सी है, और परोपकारी पुरुष मुहिम में पावन पद पाते देखें, उनके सुंदर नाम स्वर्ण से सदा लिखे जाते देखें।
And if we talk about Shyamalal Gupta only, not just this, but he composed the flag anthem in the year 1924, and this song was public for the first time in 1925 during the flag hoisting at the Congress Convention in Kanpur. And he was also the best manas penetrating and eminent Ramayana. His discourse on Ramayana was well known, and he narrated the entire Ramkatha to the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, in Rashtrapati Bhavan. So he was a great person indeed, and the song we still remember. So let's play that song and remember him. Vijay Vishwa Tiranga Pyara.
Vijay Vishwa Tiranga Pyara, Chanda Ocha Rahe Hamara. विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।
सदा शक्ति बरसाने वाला,
प्रेम सुधा बरसाने वाला,
वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा।
और श्रोता, आज ही के दिन जन्म हुआ था भारत के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान व्यक्ति पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का। शास्त्रीय संगीत के सबसे बड़े आधुनिक आचार्य के रूप में उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। पूरी तरह से निस्वार्थ और समर्पित संगीत साधक भातखंडे ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को वैज्ञानिक पद्धति से व्यवस्थित, वर्गीकृत और मानकीकृत करने का पहला आधुनिक प्रयास किया। उन्होंने देशभर में घूम घूम कर उस्तादों से बंदिशें एकत्रित करने, विभिन्न रागों पर उनसे चर्चा करके उनके मानक रूप निर्धारित करने और संगीत शास्त्र के रहस्यों से पर्दा उठाते हुए अनेक विद्वतापूर्ण पुस्तकें लिखने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो आइए सुन लेते हैं आकाशवाणी आर्काइव से ये संगीत।
गगर सनि सध निध ग मध म प ग म ग रे स नि ध मद नि ग मध नि स रि स नि ध म प नि ध प म ग रे स ग ग रे स नि स ध निध ग मध म प ग म ग रे स नि ध मध नि ग मध नि स रि स नि ध म प नि ध प म ग।
We are also remembering today V.V. Giri. He served as the fourth President of India from 24th of August 1969 to 24th of August 1974. He also served as the third Vice President of India from 13th of May 1967 to 3rd of May 1969. And he was the first President to be elected as an independent candidate. After the end of his full term, he was honored by the Government of India with the Bharat Ratna in 1975.
और अब हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता प्रेम अदीप को। प्रेम अदीप को राम के रूप में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। सीधा बनी शोभना समर्थ के साथ पर्दे पर राम की भूमिका में नजर आते थे। दिल छू लेने वाले अभिनय ने इन्हें न सिर्फ फिल्म जगत में एक विशेष स्थान दिलाया बल्कि सदा के लिए अमर कर दिया।
Yes, we are talking about Prem Adib, and the movie he starred in was Ram Rajya that came in 1943. And let me tell you that this is the only movie ever viewed by Mahatma Gandhi. And we have a song from the same film. So let's hear that.
भारत की एक सन्नाली की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
पवन पुत्र वहाँ आए, पवन पुत्र वहाँ आए, सुधी को धाय युक्ति बहु की सुधी पाए।
1941 में प्रदर्शित हुई फिल्म दर्शन के साथ ही प्रकाश पिक्चर्स में उन्होंने एंट्री की। घूंघट वाली, सागर मूवी टोन की भोले भाले और साधना, हिंदुस्तान सिनेटोन की सौभाग्य जैसी फिल्मों के साथ प्रेमदीप के करियर का ग्राफ लगातार ऊपर उठता चला गया। तो आइए सुनते हैं फिल्म अनोखी अदा का ये खूबसूरत सा गीत जिसमें उन्होंने अभिनय किया।
मंजिल की धुन में झूमते गाते चले चलो, मंजिल की धुन में झूमते गाते चले चलो, बिछड़े हुए दिलों को मिलाते चले चलो, हाँ मिलाते चले चलो। दो दिन की जिंदगी में कोई क्यों उठाए गम, कोई क्यों उठाए गम, दो दिन की जिंदगी में कोई क्यों।
We're also remembering today Jimmy Dean, an American country singer and television host and an actor and also a businessman. He was the creator of Jimmy Dean sausage brand and he became a national television personality starting on CBS in 1957. He rose to fame for his 1961 country music crossover hit, and that was Big Bad John, and his television series The Jimmy Dean Show that gave puppeteer Jimmy Henson his first national exposure with the character Rolf. So this was Big Bad John, and let's just hear this song and understand the psyche of this song.
Big John, Big John. Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John.
Big John, Big John.
Big Bad John,
Big John.
Nobody seemed to know where John called home. He just drifted into town and stayed all alone. He didn't say much, he kind of quiet and shy. And if you spoke at all,
we're also remembering today Isaac Hayes, an American singer, songwriter, composer and actor. And today is his death anniversary. Hayes and another person, Porter, were inducted into the Songwriters Hall of Fame in 2005 in recognition of writing scores of songs for themselves, the duo Sam and Cave, Carla Thomas and others. In 2002, Hayes was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame. So let's enjoy this wonderful song by him titled I Stand Accused.
I stand accused of love. And I hope it's not a crime. 'Cause if it is, I'm guilty. Loving you.
और आज के दिन हमें अलविदा कहा था हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यों का संग्रह वैष्णव की फिसलन चिंताओं का नहीं चिंतन का संग्रह है, और ये लेखक की कुशलता ही है कि इसे वे विचार और संवेदना के सामंजस्य से कर पाए। वैष्णव की फिसलन में संकलित रचनाएं हमारे आसपास की जिंदगी को उघाड़कर इस प्रकार सामने रखती हैं कि ऊपर से सीधी साधी दिखने वाली घटनाएं और स्थितियां नए अर्थ देने लगती हैं, उनके अंतर्निहित आशय उजागर हो उठते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं भारत की पहली महिला संगीतकार जिन्होंने 1930 और 1940 के दशक में हिंदी सिनेमा में काम किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरस्वती देवी की। वे बॉम्बे टॉकीज के साथ काम करने वाली कुछ महिला संगीतकारों में से एक थीं। सरस्वती देवी ने 1936 में पहली बार फिल्म जीवन नैया के लिए संगीत दिया था। इसके अलावा उन्होंने अछूत कन्या, बंधन, नया संसार में भी अपना संगीत दिया। तो आइए सुन लेते हैं अछूत कन्या का ये गीत।
मैं बन का पंछी बन के संग संग डोलूं रे,
और श्रोताओं अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर।
स्टे ट्यून्ड फॉर समाचार प्रभाता हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश @8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ वंडरफुल डे। नमस्कार।